يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إيه نبي حرض المؤمنين، مؤمنوں کو تحریک دلائیں، موٹیویٹ کریں، کس پہ؟ علل قتال، قتال پر، جنگ پر، ان کو ان کے حوصلے بڑھائیں، ان کو بک اپ کریں. اب دیکھیں یہاں پر ایک ہدایت دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب یہ ایک اسلام کا رول ہے کہ کوئی بھی ممبر پہ بیٹھ جائے اور پھر وہ لوگوں کو بھارنا شروع کر دے کہ لوگوں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایسے ہو جائے. یہ وہ بات نہیں ہو رہی، یہ پرامن حالات کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس وقت ہو رہی ہے جب کہ جنگ کا وقت آ جائے، جنگ کا موقع آ جائے. یہ تب کی آیت ہے جب جنگ بدر ہوئی ہے، کہ یعنی اس وقت آپ ان کو ابھاریں، کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا لڑنا، یہ آسان نہیں ہوتا کہ دشمن کے ساتھ جا کے ٹکرانا. تو یہ ایک جنرل بات نہیں ہے، یاد رکھیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اسلام کا عام رول کیا ہے، امن ہے. لڑنا یہ یا جنگیں کریٹ کرتے رہنا یہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے. اور یہاں پر اس کو کوئی لے کر اس طرح سے مس یوز نہیں کر سکتا کہ دیکھو جی اس طرح سے کہا گیا، کہ ایسا واقعی ہوا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ابھارا اور جنگ کے لیے موٹیویٹ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اٹھو، دوڑو، نکلو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر. اور اب سوچیں کہ جنگ کا وقت ہے، ایسے وقت کے اندر ایسی بات کر کے ان کو ان کا شوق ابھارنا، یہ اس وقت کی بات ہے. صحابہ تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر یقین کرنے والے تھے کہ ان کو جنت سامنے نظر آتی تھی. جیسے حضرت عمیر بن حمام ہے کہ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ دوڑو جنت کی طرف، تو فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر میں لڑوں گا اور میری جان چلی جاتی تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں. تو تلوار کو میان سے نکالا، جس میں ہوتی نا تلوار، جو اس کا کور ہوتا ہے جس میں رکھی ہوتی ہے، اور میان توڑ دی، اور اس لیے کہ اب یہ واپس تلوار اندر نہیں جائے گی، اب لڑتے لڑتے ہی ختم ہو جانا. تو اس وقت دیکھیں ہاتھ میں کھجوریں تھیں، کھجوریں کھانے لگے، اور پھر خیال آیا کہ یہ میں کھجوریں کھانے میں وقت کیوں ضائع کروں. فرمانے لگے کہ اگر کھجوریں کھائیں، اس کے کھانے تک بھی میں زندہ رہا تو یہ زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی. کھجوریں پھینکی اور جنگ میں چلے گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. سبحان اللہ. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شوق دلایا تو پھر کیسے وہ ہو گئے، اتنا ان کو شوق ہوا کہ وہ بھاگے. اسی لیے ہونا یہی چاہیے کہ جب بھی اللہ کے راستے کا کوئی کام ہونا تو اس کے لیے لوگوں میں رغبت دلائی جائے، کیونکہ شیطان انسان کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، ڈی مورلائز کرتا ہے، پیچھے کرتا ہے، ویک کرتا ہے. تو جب شوق دلاتے ہیں، اور شوق بھی اس چیز کے ساتھ جس کا دوسرے کے دل کے اندر جس چیز کی تمنا ہو، محبت ہو، اس چیز کا شوق دلایا جائے، نہ کہ لوگوں کو کوئی کہ نہیں ان کو کرنا ہی چاہیے ایسے. نہیں، انسان ہے نا، بھول جاتے ہیں. یہ حالانکہ صحابہ تھے، ان کو کیسے نہیں ہر چیزیں یاد تھیں، ان کو تو سب کچھ یاد تھا، جنت کا بھی پتا تھا، تو پہلی دفعہ تھوڑی وہ سن رہے تھے. لیکن یہ موقع ہوتا ہے کہ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے ہر انسان کو، خاص طور پہ اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے. شیطان بار بار آتا ہے، اس راستے کو بلاک کرتا ہے، انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو اس وقت میں ضروری ہے کہ موٹیویشن دلائی جائے، لوگوں کو شوق دلایا جائے. جیسے پڑھنے کا ہی ہے مثلاً، یہ بھی ایک اللہ کا راستہ ہے، اس کے لیے بلانے کے لیے بھی موٹیویٹ کیجئے لوگوں کو. صرف یہ نہیں کہ وہ کوئی کارڈ پکڑا کے آپ کہیں ہماری تو ذمہ داری پوری ہو، نہیں، موٹیویشن की जरूरत है उसको, आप उसको एनकरेज करें, आप उसको बताएं इसके क्या फायदे हैं। इसी तरह बच्चों को भी कोई बात बताएं तो उनको शौक दिलाएं और उनकी शौक की चीजें उनको बताएं कि देखो तुम्हें ये मिलेगा, अल्लाह ताला ये देगा। तो जो जो चीजों के उनको शौक है उस चीज को हाईलाइट करके बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लीडर थे उनके मुसलमानों के, आपकी मोटिवेशन की वजह से देखिए फिर कैसे वो लड़े, हालांकि कितने कम थे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस मौके के ऊपर ये मोटिवेशन होती है। लड़ाई के लिए तो ये हो गया, लेकिन अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए हर जगह इंसान को बार बार मोटिवेशंस की जरूरत पड़ती है, हर इंसान भूल जाता है। इन यकुम मिनकुम अशरूना साबिरूना यगलिबू मिअतैन, अगर होंगे तुम में 20 सब्र करने वाले तो गालिब आ जाएंगे 200 पे, यानी तुम्हारा एक होगा ना सब्र करने वाला, डट जाने वाला, तो वो 10 लोगों का मुकाबला कर सकता है। और इसके अंदर ये एक तरह सा ये भी कहना था कि 10 एक तुम्हारा जो है वो 10 के मुकाबले में खड़ा रहे, भागे नहीं। लेकिन उसको इस तरह से कहा गया क्योंकि ये तो मुश्किल बात है, अगर किसी को कहा जाए तुम्हें 10 से मुकाबला करना हुआ तो वो कहेगा ये तो नहीं मैं कर सकता। बदर में तो 3 की रेशो थी, एक मुसलमान था आगे 3 काफिर थे। लेकिन अल्लाह ताला का जाब्ता क्या है, रूल क्या है कि तुम डटे रहो, तुम सबर करने वाले अगर होगे तो एक एक तुम्हारा बंदा 10-10 का मुकाबला कर सकता है। और अगर इयकुम मिनकुम मिअतुन यगलिबू अल्फम मिनल्लदीन कफरू, अगर तुम्हारे 100 लोग हों तो वो 1000 का मुकाबला कर सकते हैं। तुम्हारे तो 313 थे ना, 100 भी होते तो वो 1000 के साथ लड़ सकते थे। क्यों कैसे अल्फा मीन, क्योंकि इनके पास ईमान की कुव्वत है ना। लेकिन ये बात काफिर नहीं समझ सकते, और देखें इसी ईमान की कुव्वत के साथ लड़े थे तो फतह भी हो गई। और मुसलमान लड़ता है अल्लाह के कलमे की बुलंदी के लिए, वो ना तो किसी माल के लिए लड़ता है, ना किसी सामान के लिए लड़ता है, ना किसी तरक्की के लिए लड़ता है, ना अपनी मुल्क की सरहदें बढ़ाने के लिए लड़ता है कि भले हमारा मुल्क छोटा है चलो अब बड़ा हो जाएगा, इस जगह भी कब्जा कर लें, इस जगह भी कर लें, इसके लिए तो लड़ता ही नहीं। तो अगर तुम्हारे 100 होंगे तो 1000 मिनल लदीन कफर काफरों में से जो 1000 होंगे उनके ऊपर गालिब आ जाएंगे। भी अन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, इसलिए कि वो वजह इसके कि बेशक वो एक कौम है जिसको समझ नहीं है, उनको समझ ही नहीं है कि इनके पास क्या ताकत है, वो समझ बूझ से काम नहीं ले सकते। क्योंकि इसका ताल्लुक अकल से ऐसे नहीं है कि कोई समझ आ जाए कि भाई गिनती की समझ आ जाए कि नहीं 10 और वो 100 और 1 और 10 और 100 और 1000 का क्या मुकाबला, वो तो गिनती से देखते हैं ना, ईमान की उनको थोड़ी समझ है कि ईमान कितनी बड़ी ताकत है। तो इसमें जो लड़ता ही इसलिए है कि मेरी जान मेरे रब की अमानत है, और वो उसकी खातिर चली भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, और आगे मेरे लिए तो फतह ही फतह है, मेरे लिए तो क्या रिवॉर्ड्स है, वो फिर जाहिर है ये बात काफिर नहीं समझ सकता। अल-आन खफफ अल्लाह अनकुम, अब अल्लाह ताला ने हल्का कर दिया तुमसे। क्या मतलब हल्का कर दिया, वो आलिमा और जान लिया नफीकुम दाफन, कि तुम्हारे अंदर कमजोरी है। कैसे हल्का कर दिया अल्लाह ने तुम्हारी कमजोरी को देख के, फयकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यगलिबु मिअतैन। अब तो पहले तो ये था ना कि अगर तुम्हारे एक भी हो तो वो 10 का मुकाबला कर सकता है, अब फरमाया 100 हो तो 200 का मुकाबला कर सकता है, यानी 1 और 2 की रेशो, तुम्हारा एक हो तो वो 2 के साथ लड़ सकता है। ये अल्लाह ने तख़फीफ कर दी, किस में तख़फीफ की, किस बात से, ये बदर पे तबसरा है ना। बदर जब हो चुकी तो मुसलमानों के तो ईमान का लेवल बढ़ा हुआ था, अहले ईमान तो बड़े चार्ज्ड अप थे, फिर क्यों ये कहा गया। असल में ये सहाबा के बाद के वक्त की बात है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, बेहतरीन जमाना मेरा है, फिर इसके बाद का है, फिर उसके बाद का है ना। तो आगे आगे के जो जमाने आते जाएंगे तो लोगों में कमजोरी आती जाएगी, ईमान की कमजोरी। सहाबा के ईमान को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उनकी बात नहीं है। तो इसलिए सब्र के साथ बाद वाले जो होंगे, जाहिर है ईमान जैसे जैसे कम होगा तो इतने ज्यादा से फिर नहीं लड़ सकेंगे। तुम्हारा फिर एक दो के साथ लड़ सकता है, पहले 1-10 के साथ लड़ लेता था। वा इन यकुम मिनकुम अल्फुन यगलिबू अल्फैनि बिइज़्निल्लाह, अगर होंगे तुम्हारे 1,000 तो 2,000 के साथ लड़ लेंगे, यानी अपने से डबल के साथ। पहले तो 10 गुना के साथ लड़ सकते थे, 10 गुना के साथ। अल्लाह अकबर, यानी इतना उनका ईमान था कि 100 हों तो 1,000 के साथ लड़ लेते थे, ठीक है, 20 हो तो 200 के साथ लड़ लेते। तो अब सिर्फ अपने से डबल के साथ लड़ सकते हैं, क्योंकि अब कमजोरी है। अल्लाह हू अकबर। तो पहले खुशखबरी थी 1 और 10 के मुकाबले में, और अब बाद में जब ईमान उतन उस तरह से नहीं रह गए तो फिर निस्बत भी कम की हो गई, मगर मदद तब भी अल्लाह की तरफ से होगी। वल्लाहु मा सबिरीन, और अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। मा कान अली नबीन, नहीं है किसी नबी के लिए, अन यकूना के हो लहू असरा के उसके लिए हो कैदी। पहले आयत को समझ सकते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं। किसी नबी के लिए ये नहीं है कि हूं उसके लिए कैदी, हत्ता युथ्खिना फिल अर्द, हत्ता कि वो खून बहा दे जमीन में। अब ये बात हो रही है उस वक्त की कि जब जंगी कैदी बनाए गए थे, और उनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि पहली जंग थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा कराम से, मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। अब बास सहाबा की राय क्या थी कि इनको कत्ल कर दिया जाए। इनमें एक हजरत उमर भी थे, बल्कि उन्होंने तो ये फरमाया कि आप ऐसा करें कि हर एक को उसका रिश्तेदार दे दें, वो अपने अपने रिश्तेदार को कत्ल करें, ताकि अल्लाह ताला के सामने हम बता दें कि हमारा ईमान कैसा है, कि हम कोई रिश्ते की परवाह नहीं करते अल्लाह के रास्ते में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर खामोश रहे, और फिर दोबारा यही सवाल किया कि इनके बारे में बताओ कि क्या किया जाए। अल्लाह ने इनको तुम्हारे कब्जे में दे दिया, क्या करें? हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल, हमारी राय में तो आप इनको माफ कर दें, फिदिया लेके आजाद कर दें। यानी इससे इस वक्त मुसलमानों के हालात भी थोड़े तंग थे, तो मुसलमानों को भी कुछ बेहतरी के हालात हो जाएंगे, उससे असलहा और भी ले सकते हैं, फिर इसी तरह हो सकता है ये लोग भी बाद में मुसलमान हो जाए। तो अब आपके चेहरे के ऊपर जो गम के आसार थे ना, वो चले गए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान थे, बहुत शफीक थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिया लेके सबको आजाद कर दिया। जो फिदिया नहीं दे सकते थे, उनको कहा कि हमारे 10 बच्चों को पढ़ा दें, तो उन्होंने 10 बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद उनको आजाद कर दिया। तो यानी सबको एक चॉइस दे दी कि आप फिदिया दे के अपना, और आप ना अपनी आजादी ले सकते हैं। इस पे अल्लाह ताला ने ये आयत उतार दी। तो आयत में फिर क्या फरमाया है अल्लाह ताला ने, कि किसी नबी के लिए ये नहीं है कि उसके पास कैदी हो। बाद में तो ये चॉइस दे दी गई मुसलमानों को कि आप कैदी बना सकते हैं। सूरह मोहम्मद में आगे आता है कि आप चाहें तो किसी को फिदिया लेके और फिर उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, और चाहें तो एहसान करके वैसे ही छोड़ दें, ये सूरह मोहम्मद में आया। लेकिन अभी इस वक्त, जिस वक्त के काफरों की ताकत बहुत ज्यादा थी, उस वक्त ये अल्लाह ताला के इज़न ये था कि इनको कत्ल कर दिया जाए ताकि ये दोबारा ऐसे ना उभरे। ठीक है, तो उसके अंदर ये कहा गया कि किसी नबी के लिए नहीं है कि वो कैदी बनाए, हत्ता युस्खिना फिल अर्द, हत्ता कि वो अच्छी तरह खून बहा दे जमीन में, यानी दुश्मन की ताकत को कुचल दे। और ये जो कैदी आए हुए ये भी उनके बड़े बड़े लोग थे, तो ये कैदी बना के उनको छोड़ देना ये इस वक्त जायज नहीं है, इस वक्त किसी नबी के लिए ये सही नहीं है। तुरीदुना अरद दुनिया, तुम चाहते हो दुनिया का फायदा, इसलिए कि ये था ना कि भाई ठीक है, इस वक्त अगर थोड़ा फिदिया भी ले लिया जाए तो जैसे मैंने कहा कि कुछ और भी आगे जंगी तैयारी भी की जा सकती है और मुसलमानों के हालात भी कुछ बेहतर हो सकते हैं, तुम फिदिया लेना चाहते हो। वल्लाहु युरीदुल आखिरा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आखिरत चाहता है, वहां के अजर चाहता है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह ताला जबरदस्त है, हिकमत वाला है। और आगे वाली आयत भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इसका दूसरा भी आपको माना बताऊंगी। लौला किताबु मिन इंदिल, लौला किताबु मिन अल्लाह, अगर ना होता लिखा हुआ अल्लाह के पास पहले से कि आप फिदिया ले सकते हैं, ये भी एक इजाजत थी, मगर यहां पर ये चीज ज्यादा पसंदीदा नहीं थी, यानी जायज तो थी लेकिन उस लेवल की नहीं थी जो लेवल एक नबी के लिए के शाया निशान। ठीक है, जायज था ये फिदिया लेना, ऐसा नहीं था कि कुछ गलत काम हुआ था, लेकिन उस एक्सीलेंस का नहीं था। एक्सीलेंस का काम यही था कि इनको इस वक्त खत्म कर दीजिए, इनकी ताकत को तोड़ा जाए इस वक्त, जिसको कहा गया ना कि खून बहा दे। बाद में तो ठीक है, बाद में जब जंगे हों तो जब उनकी इतनी ताकत ना हो तो फिर फिदिया ले लिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने ये लिख दिया हुआ था कि आपके लिए फिदिया लेना भी जायज है। तो अगर ये ना लिखा होता, लमस्सकुम फीमा खस्तुम अज़ाबुन अज़ीम, तो ये बहुत बड़े आज़ाब आ सकता था। अल्लाह ताला का ये फैसला हो चुका था और अल्लाह ताला ने ये जायज़ किया हुआ था, अगर ऐसा ना होता तो फिर ये बड़े आज़ाब का बाइस बन सकता था। अब दूसरे माने की तरफ आते हैं, दूसरा माना जो है वो भी इस आयत का हो सकता है और बहुत सारे मुफस्सिरीन ने उसको भी इख्तियार किया है और बिल्कुल लिजिटिमेट बिल्कुल लगता है। तो एक और तफसीर इन्हीं आयात की आप खास तौर पे उसको लिख भी लें कि ये आयतें अहले ईमान से खिताब नहीं हो रहा इनमें, बल्कि काफरों से है। काफरों के अंदर यहूदी भी हो गए, कुरैश भी हो गए, सारे हो गए। कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया ना कि हम कैदियों को फिदिया लेके फिर उसके बाद हम इनको आजाद कर देते हैं, तो उन्होंने बड़ा इसके ऊपर शोर मचाया कि ये देखो ये नबी, इनका तो मकसद ही ये है कि बस दौलत कमाई जाए और कुछ नहीं, तो इसीलिए इन्होंने जंग भी की है और इसीलिए फिदिया ले रहे हैं, तो मादी फायदे के लिए बस, जैसे और लोग करते हैं मादी फायदों के लिए ही जंगें करते हैं, कोई तेल के लिए करता है, कोई अपना मुल्क बढ़ाने के लिए करता है, कोई और कब्जे करने के लिए, तो इसी तरह इन्होंने भी जंगें इसलिए जंग इसलिए लड़ी है कि ये माल ले। तो उसके ऊपर ये बात बताई गई। और देखें ये सिर्फ उस जमाने के लोगों में नहीं था, आज भी कई लोग इस किस्म के इल्जाम लगाते हैं, ये एतराज करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वैसे क्यों ये किया था, क्योंकि आपके पास ऑप्शन थी ना, ये भी थी कि फिदिया ले सकते हैं और ये भी थी कि कत्ल कर सकते हैं, लेकिन आप रहमतुल आलमीन हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब दो रास्ते आते थे दोनों जायज होते तो आसानी वाला लेते थे। तो अब इन आयतों में दूसरी तफसीर के मुताबिक इन आयतों में उन लोगों को जवाब है जिन्होंने ये एतराज किया है कि अब आप समझे, अब दोबारा मैं पढ़ती हूँ तो अब आपको समझ आएगी। मा काना लि नबीयिन अन यकुना लहू असरा, किसी नबी के लिए तो ये है ही नहीं कि वो, यानी नबी तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कैदी बनाए, हत्ता युस्खिना फिल अर्द, यहां तक कि वो खून बहा दे जमीन में, किसी नबी के लिए ये ऐसा नहीं है कि वो खून रेजी करवा रहा है, जमीन के अंदर खून खराबा करा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो कैदी बना के और फिर उसके बाद वो फिदिये ले। समझ आ रही बात कि किसी नबी के लिए जो तुम बातें कह रहे हो ना ये गलत है, इसलिए कि नबी ऐसा कर ही नहीं सकता कि वो इसलिए कैदी बनाए और इसके लिए खून बहाए जमीन के अंदर। तुम चाहते हो दुनिया की जिंदगी का फायदा, तुम्हारा मतमाए नजर ये हो सकता है, तुम इसलिए लड़ते हो, तुम दुनिया चाहते हो। वल्लाहु युरीदुल आखिर, और अल्लाह ताला आखरत चाहता है इनके लिए। अल्लाहु अजीजुन हकीम। और लौला किताबुन मिन अल्लाही, और ये भी इसके साथ ही रिलेटेड है तो इसको भी हम साथ ही देखते हैं, अगर अल्लाह ताला का फैसला पहले से ना हो चुका होता, अगर अल्लाह ताला ने पहले से ये ना लिख दिया होता कि जब नबी होगा किसी कौम के अंदर जिस जगह पे नबी होगा और वहां पे अल्लाह ताला कोई अजाब नहीं भेजेगा तो तुम्हारे ऊपर बड़ा अजाब आ सकता था, ठीक है। और या जबकि अल्लाह ताला ने पहले से फैसला ना कर दिया होता तुम्हें मोहलत देने का तो आजाब आ जाना था। समझ आई बात? तो यानी ये दूसरा माना भी बहुत लिजिटिमेट बनता है और इसके अंदर बिल्कुल सही ये बात समझ में आती है। तो उनकी जो उनका एतराज था उसका यानी ये एक जवाब है कि नबी ने इसलिए नहीं जंग की, वो ये काम नहीं करता ये 70 लोगों को कैदी बना दे और यहाँ अपने लोगों को 14 मुसलमान शहीद हुए थे तो सिर्फ फिदिये के लिए। तो फिर अगर हम इन आयतों का रुख एतराज करने वालों की तरफ समझें तो फिर बात अच्छी तरह समझ आ जाती है कि ये बात क्या कही जा रही है। तो तुम पर अजाब आ जाता है, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे पर इज्तमाई अजाब नहीं भेज रहा। तो जो इन्होंने कहा था हम पे पत्थरों की बारिश कर दे ये कर दे, तो तुम्हारे पर कोई अजाब नहीं आ रहा क्योंकि अल्लाह ने मोहलत दी थी। और जो अगर पहला माना लें तो फिर उसमें आता है कि तफसीर में ये लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दिए जब भी आयात उतरे और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबा, तो खाओ उसमें से जो माले गनीमत हलाल है पाक है, यानी ये आपके लिए खाना जायज है। जैसे आपको पहले बताया था कि पिछली कौमों के ऊपर ये जायज नहीं था इस्तेमाल करना माले गनीमत, लेकिन तुम्हारे लिए जायज है तो बेफिक्र हो के तुम खा सकते हो, ये हलाल है तय्यब है। वत्तकुल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला रहम करने वाला है, कमी बेशियों को अल्लाह ताला दरगुजर फरमा देता है। तो अब इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है कि जो पिछली आयत उतरी तो मुसलमान जो थे वो परेशान हो गए कि हमने अब फिदिया लिया हुआ तो पता नहीं वो भी सही नहीं है जो अब हमने इन कैदियों का ले लिया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि काफिरों को तो हर वक्त कोई ना कोई शोशा चाहिए होता था कि कोई ना कोई हम कोई फितना खड़ा कर ही रखे, तो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया, देख बड़ा दीन का नाम लेते हैं, बड़ा ये लेते हैं और देखो जी फिदिये ले लेके कमाइयां कर रहे हैं, ये तो किनके कमाई के ढंग हैं, जंग तो कुछ नहीं, जंग असल में की इसलिए ताकि ये कमाइयां करें। तो जब इस तरह की बातें हों तो फिर उसके बाद वो उनका दिल में क्या आएगा कि पता नहीं ये माल सही भी है कि नहीं है। तो फरमाया नहीं ये हलाल है तय्यब। तो अब बात समझ आ गई? या यूहन्नबी, ए नबी, कुल्ली मंफी ईदी को कह दीजिए उनको जो आपके हाथों में है, मिनल असरा कैदियों में से, यानी आपके हाथों में आपके कब्जे में आए हुए कैदियों में से उनको कह दें, इन यालम अल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन, अगर अल्लाह ने जान लिया तुम्हारे दिलों में खैर, युक्तिकुम खैर मिम्मा उखिदा मिनकुम, तो अल्लाह ताला तुम्हें देगा बेहतर इससे जो ले लिया गया है तुमसे। अब ये क्या बात है, असल में बाज लोग उनमें जो आए थे लड़ने के लिए, वो बड़ी शौक से कोई मुसलमानों के साथ लड़ना नहीं चाहते थे, वो मजबूरन आए थे, वो चाहते थे कि इससे निकल जाएं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो अब चारों नाचार उनको आना पड़ा। उनकी हमदर्दियां मुसलमानों के साथ ही थी, और बाज कहते हैं कि जो है ना उनके दिल में इस्लाम था, मगर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था अपना इस्लाम। तो जब उनसे फिदिया लिया गया तो बहुत से कैदी कहने लगे कि हम तो दिल से तो हम मुसलमान हो गए हुए, हमसे आप क्यों ले रहे हैं। तो कहा गया कि ऐ नबी इनसे कह दें कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में खैर जान ली, अल्लाह को तो हर चीज पहले ही पता है, फिर कैसे, यानी अगर तुम्हारे दिलों में वाकई खैर है ना, तो अल्लाह को फिर पता है, फिर अल्लाह तुम्हें लौटा देगा जो तुमसे लिया गया उससे बढ़ के लौटा दे, बेहतर दे देगा उससे जो तुमसे लिया गया, तो तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा कहीं जाया नहीं होगा। ठीक है, तो इसी पे तो हजरत अब्बास फरमाते हैं ना, उनसे तकरीबन 20 औकिया सोना लिया गया था उनके फिदिये में, तो बाद में उन्होंने फरमाया कि वाकई ये बात मेरे लिए सच हो गई, आया तो मेरे लिए ही उतरी, क्योंकि उनके दिल में भी इस्लाम तो था, लेकिन अभी इस्लाम उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, तो वो कहते मैं क्यों दूं, तो अब उनसे लिया गया, लेकिन बाद में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने, यानी जब इस्लाम लिया है ऑफिशियली, जब इस्लाम लिया है, तो अल्लाह ताला ने 20 ताजिर गुलाम मुझे दिलवाए, जो जाके यानी कमाई करके लाते थे, और उससे बेहतर, उससे भी ज्यादा अल्लाह ताला ने अता कर दिया। इनके बारे में ये भी आता है कि ये कुरैश ने फिदिये की रकमें देख के अपने अपने आदमियों को भेजा, हर एक ने अपने कैदी की रकम वसूल की, तो हजरत अब्बास ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं तो मुसलमान ही था, आपने फरमाया मुझे तुम्हारे इस्लाम का इल्म है, अगर ये तुम्हारा कॉल सही है तो अल्लाह ताला तुम्हें इसका बदला दे देगा, लेकिन चूंकि ये सारे मामला तो जाहिर भी है ना, इसलिए आपको फिदिया तो देना ही होगा, बल्कि अपने भतीजों का भी देना होगा और अपने हलीफ का भी देना होगा। तो उनने ये कहा, या रसूल, मेरे पास तो इतना माल नहीं। आपने फरमाया वो माल कहाँ है जो तुमने और उम्मुल फजल, जो इनकी बीवी थी, उन्होंने जमीन में दफनाया हुआ है, और तुमने कहा कि अगर मैं अपने सफर में कामयाब रहा तो ये माल फलां फलां को दूंगा। तो अब हजरत अब्बास की जुबान से बेसाख्ता निकल गया कि वल्लाही आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, क्योंकि उसके उस माल के बारे में तो किसी को भी नहीं पता सिवाय मेरे और मेरी बीवी की। तो फिर उन्होंने 20 औकिया सोना दिया था, और यही वो जंग है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब ने वो हार अपने शौहर को छुड़ाने के लिए भेजा था, जो उनको उनकी वालदा हजरत खदीजा ने शादी के मौके पे तोहफे में दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगे, आपने अपने साथियों से पूछा कि अगर तुम लोग इजाज़त दो तो ये हार भी वापस कर दिया जाए और अबुल आस को वैसे ही भेज दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार। तो फिर उनको, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया था और फिर उनको आज़ाद कर दिया गया था। तो यहाँ से ये आयत बताती है कि दिलों के हाल अल्लाह जानता है, जिसके दिल में नेकी होगी तो अल्लाह को पता है। यहाँ पे तो कहा गया ना अल्लाह ताला उसको वापस दे देगा उससे बेहतर, लेकिन वैसे भी जनरली आप देखें, अगर किसी के दिल में नेकी का जज्बा है ना, तो उसको बहुत ऐलानियां करने की जरूरत नहीं कि बस मेरा तो ये, मेरे दिल के अंदर तो ये है और ये है, अल्लाह को पता है अगर आपके दिल में है, तो किसी को पर भी साबित करने की जरूरत नहीं है। वह यह फिर लकुम, और वो माफ भी कर देगा तुमको, वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। यानी उन कैदियों को कहा जा रहा है, सोचें जो लड़ने के लिए आए उनको खुशखबरी दी जाती है, अगर तुम ईमान ले आते हो ना तुम आरे जो तुमने फिदिये में दिया है वो भी तुम्हें उससे बेहतर अल्लाह ताला लौटा भी देगा और तुम्हारी खताएं भी माफ कर देगा। युरीदु खयानतक, और अगर वो चाहें खयानत तुझसे, यानी ऊपर ऊपर से इस्लाम ले आए और फिर कहें कि अंदर से उनके धोखा देने की नियत हो, फकद खानुल्लाह मिन कबल, तो तकीन उन्होंने तो अल्लाह की खयानत की है इससे पहले। अभी तो तुम्हारे साथ कोई बात कर रहे हैं, तो इससे पहले अल्लाह की खयानत किया है, शिर्क अल्लाह के साथ खयानत। तो इससे पहले भी इन्होंने खयानत की भी है, फम का ना मिन हूं, तो उसने काबू में दे दिया उनको, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे कब्जे में इनको दे दिया है। तो ये तो फिर अगर वो खयानत करते हैं जुबान से कह के और हम इस्लाम ले आए और दिल में धोखा है उनके सिर्फ बचने के लिए, तो इन्होंने तो इससे भी बड़ा काम किया हुआ पहले। अगर आज ये पकड़े गए हैं, आज अल्लाह ने इनको तुम्हारे काबू में दे दिया, कल भी अल्लाह इनको दे सकता है तुम्हारे काबू में। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला। कोई भी इंसान दिल में क्या रखता है, किसको धोखा दे रहा है, किससे बदअहदी कर रहा है, अल्लाह ताला सब जानने वाला। इन्नल्लदीना आमनू वहाजरू व जाहदू भी अमवाली व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की, ये कौन थे, जो मक्का के रहने वाले थे मुसलमान, जिनको हम मुहाजरीन कहते हैं। मुहाजरीन ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की, नंबर थ्री उन्होंने क्या किया, जिहाद किया, अपने मालों के साथ अपनी जानों के साथ सब कुछ लगा दिया फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। ये एक ग्रुप है, ठीक है। और दूसरा ग्रुप कौन सा है, वल्लदीन आवो, और वो लोग जिन्होंने उनको पनाह दी, व नसरू, और उनकी मदद की, उलाइका यही लोग, बादहुम औलिया उबाद, ये एक दूसरे के वली हैं। ये जो दो ग्रुप्स हैं ना, ये हैं एक दूसरे के वली। एक वो हैं जो सब कुछ अपना लुटा के आ गए, हिजरत करना आसान काम नहीं है, और वो भी हिजरत इसलिए नहीं कि आगे जाके कुछ बड़ी डिग्री मिल रही है, बड़ी काबिलियत मिल रही है, वहां जाके अपना बिजनेस करेंगे, वहां एस्टेब्लिश होंगे, वो कोई ऐसी जगह थी जिसको बड़ी डिमांड थी जहां पे जाके लोग जाने के लिए, कोई ऐसे नहीं है जैसे आज कई मुल्कों से लोग वेस्ट में आके शिफ्ट होते हैं, मूव होते हैं सिर्फ इसलिए कि अपने बेटर फ्यूचर करेंगे यहाँ पे। इस सब में से कोई भी चीज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ क्या था कि हम किसी और जगह जाके अपने दीन के ऊपर आजादी के साथ अमल कर सके, क्योंकि यहाँ पे उनको दीन की आजादी नहीं थी, तो सिर्फ इस दीन इस्लाम के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए उन्होंने ये हिजरत की थी और जिहाद किया। फिर देखो लगा दिया उन्होंने सब कुछ अपना, अपने माल भी लगा दिए, अपनी जानें भी लगा दी अल्लाह के रास्ते, वो लोग, और वो लोग जिन्होंने इनको पनाह दी वो क्या उन्हें अंसारे मदीना, तो पहला ग्रुप मुहाजरीन का, दूसरा अंसार का, और उन्होंने इनकी मदद की। आप देखें इससे पहले वो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे, कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस चीज का कि किसी की दीन की वजह से भी कोई ताल्लुकदारी हो, कोई क्लोज रिलेशनशिप हो सिर्फ दीन की वजह से, तो वहां पे होती थी, ताल्लुक होते थे, लोग एक दूसरे के हलीफ होते थे, कबीले हलीफ होते थे, या रिश्तेदारियां होती थी, एक एक कबीला होता था किसी के उनका, तो सेम कबीला है, सेम खानदान है, तो इसकी वजह से आपस के अंदर ताल्लुकात होते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि दीन की वजह से कोई ऐसे बॉन्ड में बन जाए, ऐसी मोहब्बत हो जाए। ये फर्स्ट टाइम इस्लाम ने इंट्रोड्यूस कराई है कि ईमान की वजह से भी कोई मोहब्बत हो सकती है, एक अल्लाह की जात बीच में होने की वजह से उसके नाम पे भी कोई मोहब्बत हो सकती, ईमान पे, इस्लाम पे भी कोई मोहब्बत हो सकती, ये भी कोई ऐसी चीज है। और देखें फिर वो लोग जो छोड़ के आए, और जैसे हमने अभी बात की कि वो लोग जिन्होंने उनको पनाह दी, इनकी मदद की, ये खुले दिल के साथ किस तरह उनको वहां बसाया, सोचिए ना, बिल्कुल खाली हाथ लोग आ रहे हैं, ना उनके पास कोई अपना कैश थोड़ी लेकर आ रहे थे, ना उनके पास कोई घर था, ना कोई काम जॉब्स थी, ना उनके पास कोई जिंदगी गुजारने के लिए कोई सामान था, ना उनके पास कोई खाना पीना था, कुछ भी नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था, कितना एक जगह नई जगह आप जाते हैं तो कितनी जरूरियातें जिंदगी होती। तो अब उसमें ऐसे वक्त के अंदर आप देख लें जिन मुल्कों में रेफ्यूजीज आते हैं कितने मसाइल हो जाते हैं, कितने उन उस मुल्क की इकोनॉमी पे कितना बोझ पड़ जाता है। आसान थोड़ी होता है किसी को इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करना। अब छोटी सी एक मदीना की बस्ती है उसके अंदर इतने रेफ्यूजीज आ गए, रेफ्यूजीज ही थे वो मुहाजरीन। लेकिन आज भी दुनिया में जहां पे लोगों के पास इतना कुछ है वहां पे भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कोई लोग दूसरों को ऐसे एम्ब्रेस करें, ऐसे उनको गले लगा लें कि उनको फील ही ना होने दें कि हम अपने घरों से निकले, उनको अपने घरों में बसा लिया। ये नहीं किया कि अच्छा चले आपको किसी जैसे मसलन आप कह सकते हैं होटल का किराया दे देते हैं आप वहां जाके रहें, हम घर में तो नहीं हम आपको रख सकते। नहीं, उन्होंने अपने घरों में रखा और ये बहुत बड़ी बात है। इसकी मिसाल ना आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। आप बड़ी बड़ी फतुहात देख लें, बड़ी बड़ी माइग्रेशंस देख लें, बड़ी रेफ्यूजीज का सेटअप देख लें, आपको कहीं नहीं मिलता। आज भी दुनिया में उनके खैमे लगा दिए जाते, रेफ्यूजी कैंप्स हैं वहां जाके लोग रोटी पानी दे आएंगे, लेकिन कौन होगा जो उनको उठा के गले से लगा ले और कहे कि आ जाओ आप हमारे भाई, आ जाओ आप हमारे साथ रहो, अगर मेरे घर में चार कमरे हैं तो चलो मैं एक कमरा दे देती हूँ आपको। आज ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए वो कैसे खुले दिल वाले थे। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से मोहब्बत किया और अंसार की मोहब्बत को ईमान का हिस्सा करार दिया, ईमान का हिस्सा करार दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार का एक शख्स होता। सुभान अल्लाह। अगर सब लोग एक रास्ते से जाएं और अंसार दूसरे रास्ते से जाएं तो मेरा रास्ता वही होगा जो अंसार का रास्ता है। अंसार मगज हैं और तमाम लोग छिलका हैं, यानी उनको उनको जिस्ट कहा गया। मगज सबसे जबरदस्त चीज तो मगज होता है और बाकी लोग छिलका हैं। ए अल्लाह अंसार पे रहम फरमा, ए अल्लाह अंसार की औलादों पे रहम फरमा, ए अल्लाह अंसार की औलादों पे रहम फरमा। इतनी दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को दी थी, इतनी दुआएं दी थी। अल्लाह हू अकबर। जब मक्का फतह हुआ तो फिर उन लोगों को डर हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यहीं रह जाएं। जब बाद में हुनैन में गालिबन माले गनीमत तकसीम हुआ तो कुछ लोगों को एतराज हुआ कि जो है इन्होंने शायद उनको ज्यादा दे दिया, मक्के वालों को ज्यादा दे दिया, हालांकि आपने उनकी दिलजोई के लिए दिया था। और बाज जगह पे आता है कि आपने हुमस में से दिया था, अपने हिस्से में से दिया था ताकि इनको दिल मायल इनके हों इस्लाम की तरफ, क्योंकि काफरों को भी दिया था ना। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई थी कि ए अंसार, उस वक्त इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया था कि तुम ऐसे थे, तुम गुमराह थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत अता फरमाई, तुम कटे हुए थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें जोड़ दिया। यानी ये अल्लाह ताला के एहसानात थे, तुम्हारे ऊपर कितने एहसानात, उनको अल्लाह ताला के एहसानात याद कराए, फिर फरमाया तुम भी ये कह सकते हो कि हमने आपके साथ ये किया, हमने आपको पनाह दी, हमने आपको ये दी, तुम भी ये कह सकते हो। तो अंसार मतलब ये कैसा हो कि सब लोग, कोई अपने साथ कोई माल लेके जा रहा है, कोई 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 बकरियां लेके जा रहा है, कोई कोई और माल लेके जा रहा है, और तुम अपने साथ अल्लाह के रसूल को ले जाओ। तो अंसार फूट फूट के रोने लगे। उनके कुछ लोगों ने कह दिया, हर तरह के लोग होते हैं बीच में, तो कुछ लोगों ने ये बात कह दी थी देखो जी इन्होंने उनको दे दिया और हमें नहीं दिया। माल बड़ा एक ऐसी चीज होती है ना, बड़ी बड़ी जगह पे गड़बड़ कर देती। फरमाया कि कैसा हो कि लोग अपने अपने माल अपने साथ लेके जाएं, तो तुम अल्लाह के नबी को ले जाओ अपने साथ। अल्लाह हु अकबर। तो अंसार की बड़ी फजीलत है, जहां पे मुहाजरीन की फजीलत है वहां अंसार की भी है। ना तो हिजरतें करना आसान है और ना ही अपने दिल ऐसे खोलना आसान है। तो ये आपस में एक दूसरे के औलिया हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको, ये रिश्ता वो था जो, एक तो रिश्ते होते हैं ना अल्लाह ताला ने खून के रिश्ते बनाए होते हैं, ये वो रिश्ता था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में इनके दरमियान कर दिया, विलायत का रिश्ता। और वली जो होता है वो बड़ा ही एक प्यारा रिश्ता है, क्योंकि इसका एक माना नहीं किया जा सकता। सरपरस्त हम लिख तो देते हैं, लेकिन वली गहरे दोस्त को भी कहते हैं, वली हिमायती को भी कहते हैं, गार्डियन सरपरस्त को भी कहते हैं, सपोर्टर को भी कहते हैं, मुश्किल वक्त के अंदर साथ खड़े होने वाले को भी कहते हैं, करीबी रिश्तेदार को भी कहते हैं। इसका माना बहुत वसी है। तो ये हैं जो आपस में एक दूसरे के वली हैं, मददगार हैं, एक दूसरे के साथ इनका रिश्ता है। अल्लाह अकबर। वल्लदीन आमनू, और वो लोग, अब ये थर्ड ग्रुप है, वो लोग जो ईमान लाए, वलम युहाजिरू, और उन्होंने हिजरत नहीं करी, मालकुम में वलायतिहिम मिन शय, आपके लिए उनकी विलायत में से कोई भी चीज नहीं है, हत्ता युहाजिरू, यहाँ तक कि वो हिजरत करें, वो उनके साथ आपका विलायत का रिश्ता नहीं, क्योंकि उन्होंने हिजरत नहीं की ना। इससे पता चलता है, ठीक है वो तुम्हारे मुसलमान भाई तो हैं, अभी आगे आपको पता चलेगा बात उनकी भी आ रही है, मुसलमान तो है, एक इस्लामी अखुवत होती है, उसके ताल्लुक से तो हर एक मुसलमान दूसरे का भाई है, लेकिन देखें बाज ताल्लुकात बाज से बढ़ के होते हैं, और वो बढ़ के ताल्लुक क्यों है, वो इसलिए कि जिसने कुर्बानी ज्यादा दी उसके साथ ताल्लुक भी ज्यादा है। ये कुर्बानी नहीं दे सके, ये अपने घर नहीं छोड़ सके, इन्होंने ठीक है ईमान ले आए, अपने घर नहीं छोड़े, वहीं रहे अपने अपने इलाकों में, हिजरत ही नहीं की, तो तुम्हारे पर इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इनकी मदद की, इनकी हिमायत की। ठीक है, तो यानी अब पता नहीं है ना कि ये अब वफादार हैं भी कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने हिजरत ही नहीं की। वह इन स्तन सर हुकुम फिर दीन, और इन अगर इस तन सर हुकुम, वो मदद मांगे, इस तंसार किससे, इस्तफाल से, नसर है इसका रूट, वो मदद मांग रहे हैं अगर तुमसे, फिर दीन, दीन के मामले में, यानी उनके ऊपर कोई ऐसी आफत आ गई है जिस जगह वो रह रहे हैं, हिजरत जो नहीं की उन्होंने, तो अब वो आपसे मदद मांगते हैं, दुनियावी मामलात में नहीं, दीन के मामले में, उनके ऊपर वहां पे कोई जिस जगह फंस गए हैं, कोई उनके ऊपर मुसीबत पड़ गई है, कोई उनके साथ मसले हो गए हैं, तो अलैकुम नसर, तब ये नहीं है कि तुमको नहीं, आपने हिजरत नहीं की थी ना, अब यहीं पे रहो, अब देखो अब तुम्हारे पर ही आया ना, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसे हो, नहीं, तब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप फिर भी उनकी मदद करेंगे। समझ आई बात? आप देखें ये असूल की कितने प्यारे असूल हैं जो इस्लाम के, वो चाहे आपके लिए हिजरत करके आपकी तरफ नहीं भी आए, तब भी आपको, अगर वो आपको मदद के लिए पुकारते हैं तो आप मदद करें। ठीक है, इनका स्टेटस वो नहीं है, उनका मकाम और मर्तबा वो नहीं है जो दूसरे मुहाजरीन का है या अंसार का है, लेकिन फिर भी अब एक मोमिन ने पुकारा है दूसरे को, तो इनकी मदद की जाएगी। इल्ला, मगर एक्सेप्शन है, एक एक एक्सेप्शन है मदद करने में, इल्ला आला कौमी मुबैना को व बैना हम मीसा को, कि आपके और उस कौम के दरमियान अगर कोई मुआहिदा है ना अमन का, तब आप मदद नहीं कर सकते। यानी अल्लाह अकबर, अब मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, मसलन एक काफिर मुल्क के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अब वो मुसलमान पुकारते हैं कि हमारी मदद करो, मुसलमान मुल्क को कहते हैं अब हमारी मदद करें, वो मुसलमान मुल्क के ऊपर जरूरी है कि वो उनकी मदद करे, लेकिन अगर उन्होंने उस काफिर मुल्क के साथ, इस मुसलमान मुल्क ने इस काफिर मुल्क के साथ अमन का मुआहिदा किया हुआ है, हम आपके साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी रखेंगे, हमारी एम्बेसीज भी एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, अमनो अमान के भी एग्रीमेंट्स हैं, सारा कुछ है, तब एग्रीमेंट तोड़ के और उन मुसलमानों की मदद के लिए, और किसी तरह भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरह भी ऐसे मुसलमानों की कोई खुफिया तौर पे अंदर ही अंदर से काफिर के कौम को पर हमले करना या उनको मारना या उनको साथ कोई भी जुल्म ज्यादती करना वो जायज नहीं होगा। यानी खुफिया तौर पे भी किसी तरह मदद करने के लिए उनके साथ, मसलन आज सिर्फ फौजों के अंदर नहीं होती लड़ाइयां, बीच बीच में भी बॉर्डर से पार करा देते हैं, ये फिर कोई जिहाद नहीं होगा क्योंकि आपने ऊपर से उनके साथ मुआहदा किया हुआ है, अंदर अंदर से आप अपने लोग उनके अंदर भेज रहे। वो तो फिर मुआहदे को क्या करो, सबके सामने लाकर डाल दो कि नहीं आपने ये खयानत किया, हम अब आपके साथ मुआहदा नहीं रखेंगे। जब मुआहदा खत्म हो गया फिर लड़ो उनके साथ, चाहे फिर लड़ो सामने से भी जैसे भी, मगर ये नहीं कर सकते कि खुफिया तौर पे ऊपर ऊपर से मुआहदा और अंदर अंदर से उन मुसलमानों की मदद करने के लिए इधर से लोग भेज रहे हैं ताकि वो जाके लड़े वहां पे, ये नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? या मुआहदा खत्म करो, या फिर अगर मुआहदा है तो अब वो मुसलमान अगर मदद के लिए पुकार रहे हैं तो फिर नहीं मदद कर सकते। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह ताला सब जानता है, सब देख रहा है जो तुम अमल करते हो, ऊपर से क्या कर रहे हो, अंदर से क्या कर रहे हो, क्या किसके साथ मुआहदे हैं, किसके हाथ बंधे हुए हैं, कौन है जो मदद के लिए पुकार रहा है, अल्लाह ताला सब देख रहा है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसी मुल्कों के साथ जंग करना या जंग के लिए या बंदे खुफिया तौर पे वहां पे भेजना जिनके साथ मुआहदे हुए हैं अमन के, ये नहीं कर सकते। इससे पता चलता है इस्लाम अमन के लिए और सॉरी मुआहदे के लिए कितनी पासदारी का हुक्म देता है। जब आपने मुआहदा कर लिया ना तो वो नहीं तोड़ना। अब आप अबू जंदल का देख लो किस तरह वो बेबस हैं और कैसे मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम मुझे इनके हवाले फिर कर दो, लेकिन नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अब वो पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी हालत इतनी अबतर हुई हुई है लेकिन मुसलमानों के हाथ बंधे हुए हैं, क्या करें, उनके मुआहदा जो कर लिया। इस तरह आज भी है, कई मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ आपके अमन के मुआहदे हुए हैं, आप उनके साथ कैसे वहां पे जो मुसलमान चीखों पुकार कर रहे हैं उनको कैसे मदद कर सकते हैं। ये मोमिन जो होता है ना वो दो मुंह वाला नहीं होता कि ऊपर ऊपर से उनके साथ मिल रहे हैं, ऊपर ऊपर से उनके साथ मैच खेल रहे हैं, ऊपर ऊपर से उनके साथ बड़े प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं और अंदर अंदर से कुछ और कर रहे हैं, ये नहीं होता तरीका। वल्लदीन कफर उबादुम औलिया उबाद, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनमें से बाज मददगार हैं बाज के, जो तो काफिर है ना वो बाज बाज के औलिया हैं, काफिर एक दूसरे के मददगार हैं, काफिर एक दूसरे की हिमायती हैं, ये इस्लाम के खिलाफ काफिर सब एक हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी काफिर हो, चाहे वो आपस के अंदर वो चाहे कितने भी उनके दिल फटे हों, ईसाई हैं और यहूदी हैं, वो आपस के अंदर उनकी चाहे दुश्मनी हो इस्लाम के खिलाफ वो खुद एक हो जाते हैं। इल्ला तफालूहु तकुन फितनतुन फिल अर्द, अगर नहीं तुम करोगे इसको, किसको, कि तुम भी अगर इस तरह एक नहीं होगे ना जैसे वो आपस में एक हुए में तुम्हारे खिलाफ, अगर तुम एक नहीं होगे तकुन फितना तुम फिल अर्थ, तो फितना बरपा हो जाएगा जमीन में, वह फसाद उन कबीर, और बड़ा फसाद होगा, जबरदस्त फसाद होगा जो आज आप देख रहे हैं। वो देखें मुख्तलिफ मजाहिब के होके भी वो आपस में एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, लेकिन क्या बात है कि मुसलमानों तुम नहीं होते, मुसलमानों अगर तुम ऐसे नहीं होगे तो फिर फितना होगा। और फिर देखें आज वो फितना आप देख रहे हैं ना, अगर दीन की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं होते, एक दूसरे की मदद नहीं करते तो कैसा फसाद है, मुसलमानों की हवा उखड़ गई, उनका कोई रोब नहीं रहा। अगर वो ही किसी मुसलमान के लिए मदद मदद करने के लिए उनके वली नहीं बने, उनके सपोर्टर नहीं बने, उनके हिमायती नहीं बने, तो फितना ही है ना। आज मुसलमान जगह जगह मार खा रहे हैं, और दुश्मन को ये पता है कि इनका एक भी मार दोगे तो दूसरा बोलेगा नहीं, क्योंकि उसका वली नहीं है ना, वो उसका वली नहीं है, उसका सपोर्टर नहीं है, हिमायती नहीं है। इनको सबको भी जलील कर दोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और ये भी है कि भाई फितना कैसे होगा कि अगर तुम आपस में औलिया नहीं बनते, एक दूसरे की हिमायती नहीं बनते, तो जो कमजोर मुसलमान होंगे ना, जो मार खा रहे होंगे, वो ये ना हो कि दीन से ही फिर जाए कि मुसलमानों ने तुम्हारी मदद ही नहीं की। तो काफरों के मुकाबले में मुसलमानों को भी एक दूसरे के औलिया होना जरूरी है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, एक दूसरे के हिमायती बने। मैंने आपको बताया ना कितने सारे माने, मददगार बने, दोस्त बने, सपोर्ट करें। तुम भी ऐसे बनो, वरना फितना ही होगा और फसाद होगा। मुसलमानों की आज कोई जमीयत नहीं है, बिखरे पड़े हैं, फिर हम कहते हैं हाय क्यों ऐसा है, क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा। कुफर वाले तो सब एक हैं, और मुसलमान क्या है। वल्लदीन आमन हुआ हाजर हुआ जाहदू फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में। वल्लदीन आवा व नसरू, और वो लोग जिन्होंने पनाह दी और मदद की। अब ये जो हिजरत करने वाले, ये वो ही उस वक्त के ही हैं जो मुहाजरीन हैं। अब तो कोई हिजरत नहीं है, वैसे हालात ही नहीं है तो हिजरत की भी क्या है। अनलेस कि वैसे ही हालात हो जाएं तो फिर हिजरत होगी। तो वो जो मुहाजिर थे और जो अंसार थे, उलाएका हुमुल मुमिनून हक्का, वो ही है सच्चे मोमिन। वाकई जब इंसान अपने ईमान को सबसे आगे रखता है और ईमान के आगे हर चीज की कुर्बानी देने को तैयार होता है, तो वाकई वो साबित कर देता है कि उसका ईमान सच्चा है। इन्होंने लुटा दिया अपने घरों को, अपने मालों को, अपने काम कारोबारों को, अपने रिश्तेदारों को। कितने ही लोग थे जिनके सारी सारी फैमिलीज वहां रह गई थी, अकेले अकेले पहुंचे थे, लुटे पुटे, हाथ में कुछ नहीं, खाली हाथ बिल्कुल। और ये लोग जिन्होंने पनाहें दी, अपने घरों के दरवाजे खोले, कितने बड़े दिल थे। वाकई अल्लाह ताला ने फिर गवाही दी कि इनके ईमान सच्ची हैं, अल्लाह की गवाही आ गई। क्योंकि सच्चा ईमान फिर बोलता है, सच्चा ईमान ऐसे नहीं होता, हमारे ईमान दिल के अंदर है और वो नजर ही नहीं आ रहा कहीं। नहीं, आप हमें कुछ ना कहें, हमारे अंदर ईमान इतना है कि बस पता नहीं कितना बड़ा है वो ईमान, जो कहीं दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता? हालांकि जब ईमान होता है ना, तो वो जाहिर भी हो जाता है, वो नजर आने लगता है, वो अमल में आता है, पता लग जाता है। उसके लिए दावों की तो जरूरत नहीं होती कि मैं बोल बोल के बताऊं मेरे अंदर तो बड़ा ईमान है। आपको क्या पता मेरा ईमान कितना है? आप अपना काम करें, आपको क्या पता। हम ईमान वाले ही बहुत हैं, हमारे दावे कितने हैं, और दूसरों को हम कितना सुनाते हैं अपने ईमानों का, लेकिन ये कैसा ईमान है जो कहीं नजर ही नहीं आता। तो आज भी जो लोग कहीं से इस वजह से हिजरत करें कि उनके ईमानों को खतरा है, उनके दीन की, वहां पे वो अपने दीन पे नहीं चल सकते, वो उसकी वजह से कहीं दर बदर होते हैं, और दूसरी जगह के लोग जो कि वहां पे इस्टेब्लिश्ड हैं, वो उनको पनाह दे दे। तो वाकई इन ये वो लोग हैं जिनके ईमान वाकई सच्चे हैं। लहम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इनके लिए बख्शिश भी है और इज्जत वाला है, रिस्क भी है अल्लाह ताला के यहाँ। ये है अल्लाह ताला की कदरदानी ऐसे लोगों के लिए कि जिन्होंने अपने ईमान को वाकई साबित किया कि उनका ईमान सच्चा है। वल्लदीन आमनु मिन बादु व हाजरु व जाहदु माकुम फौलाइका मिनकुम, और वो लोग जो ईमान लाए इनके बाद, मिम बाद, इसके बाद ईमान लाए, किसके बाद, सुलह हुदैबिया के बाद जो लोग ईमान लाए और हिजरत करें, यानी वो थोड़ा सोचते रहे, पहले देखते रहे, फिर थोड़ा इस्लाम अब थोड़ा उभरना शुरू हो गया था। उसके बाद तो जाहिर है वो वाले दिन तो खत्म हो गए थे जिनमें जंगें हो रही थी और जिनमें मुसीबतें पड़ी हुई थी, वो वाले दिन तो खत्म हो गए थे। तो अब तो अमनो अमान हो गया था ना, कि मुआहदा हो गया था कि अब कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं करेगा। तो और उसके बाद तो अब इसीलिए सीरत पढ़ना बहुत जरूरी है अगर कुरान समझना है। तो अगर आप वो सीरत से वाकफियत नहीं है ना, तो कहीं कहीं आपको वाकयात तो पता होंगी कहाँ एक बदर हुई थी, लेकिन एक सीक्वेंस में आपको नहीं समझ आएगा कि क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। अब हुदैबिया के बाद तो फतह मक्का हुआ, तो खैबर वगैरह हुआ, लेकिन इनके साथ तो कुछ ऐसा मसला नहीं हुआ। तो जो लोग बाद में ईमान लेकर आए ना और हिजरत उन्होंने की और जिहाद किया, महाकुम तुम्हारे साथ वो लाए का मिनकुम, तो वो भी तुम्हारे में से ही है, तुम्हारे में से ही है। यानी खैर उनको वो दर्जे नहीं बताए गए कि जो उनके हैं, मगर हैं तुम्हारे में से ही, तुम्हारे ही भाई हैं। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि देखिए एक वो वक्त होता है जिसमें स्टार्ट में जब इंसान कोई काम होता है ना उसके अंदर अपना हिस्सा डाल देता है, या कुर्बानी के वक्त आगे बढ़ता है, उसका जो मकाम होता है, तो बाद में जब हर चीज सेट हो जाए, एस्टेब्लिश हो जाए, फिर कोई आगे साथ मिल जाए कि चलो जी हमारा भी कोई नाम हो जाएगा, वो बात नहीं बनती। अल्लाह के यहाँ भी दर्जे हैं, ईमान वालों के भी दर्जे मुख्तलिफ हैं, हर ईमान वाला एक लेवल पे नहीं है। वह उलुल अरहामी बादुम अउला बिबादिन फी किताबिल्लाह, और जो रिश्तेदार हैं उनमें से बाज ज्यादा करीब हैं बाज के अल्लाह की किताब में। अल्लाह की किताब कौन सी है? लोहे महफूज। लोहे महफूज में जो आपस में ताल्लुक रहम के रिश्ते की वजह से है, रहम की वजह से जो आपस के अंदर रिश्तेदारी है, वो ज्यादा करीबी है बाज की, यानी एक दूसरे के साथ जो रहम का रिश्ता है, इसकी वजह से जो रिश्तेदारी बनती है, यानी जो हमारे असल रिश्तेदार होते हैं वो जो हमारे रहम के रिश्ते की वजह से होते हैं, वो असल में सबसे करीबी हैं अल्लाह की किताब में। ये क्यों कहा गया? इसलिए कि एक और रिश्ता भी तो बन चुका था ना मदीना, और वो रिश्ता मुआखात की वजह से था, जहाँ पे भाई भाई बनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजरीन को। तो शुरू में तो ऐसे था कि वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे सके भाई होते हैं, यानी वो एक दूसरे के विरासत के अंदर भी रिश्तेदार थे, सब चीज़ों के अंदर ऐसे ही थे। लेकिन उसके बाद फिर जब हालात सही हो गए और इसकी ज़रूरत नहीं रही, तो फिर कहा गया कि नहीं, अब उनको विरासत नहीं मिलेगी, अब जो अपने अल्लाह ताला ने जो रहम के रिश्ते बनाए हैं वो ही असल रिश्ते हैं। अल्लाह की किताब में भी उन्हीं को करीबी रिश्ता बताया गया है। इन्नल्लाहा बिकुल्ली शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। ये अहकामात उस रब ने दिए हैं जो हर चीज को जानने वाला है। क्या इस पे यकीन है हमारा कि ये हुक्म, ये बातें उस रब ने बताई हैं, चाहे हमें लॉजिकल लगे या ना लगे, या हमें लगे कि नहीं इस तरह तो नहीं करना चाहिए, इस तरह तो और ज्यादा वो मौका पा लेंगे, इस तरह तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारे दुश्मन ऐसे हो जाएंगे, हमें तो इससे फायदा नहीं होगा, ये तो हमारा नुकसान हो जाएगा, कुछ भी जहन में आता है, याद रखिए इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, सब चीज अल्लाह के इल्म में है, वो खूब जानता है हर चीज को। फिर तुम्हें जरूरत नहीं है कि इन अहकामात के आगे अपनी अकल इस्तेमाल करो और ये समझो कि मुझे ज्यादा पता है, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, वल्लाहु यालमु वअंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जब ये समझ आ गई ना, तो फिर सारे अहकामात पे अमल करना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला इन आयात की सही समझ, सही फहम हमें अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسأكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.